نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جی، اگلا ٹاپک بہت ہی خوبصورت حجت الوداع، پیج 614 ہے. دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور اللہ کی الوہیت کے اثبات، یعنی اس کو ثابت کروانا، اور اس کے ماں سوا کی الوہیت کی نفی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی. اب گویا غیبی ہاتف آپ کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے. یہ کیا ہوتا ہے غیبی ہاتف؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں نا، جب تک کام نہیں ہوتا آپ رکے رہتے ہیں، جب کام ہو جاتا ہے یا آپ کو لگتا ہے اب نہیں ہونا تو واپس آ جاتے ہیں. فطرت کا اصول ہے. اللہ نے ہمیں 60-70 سال کی یہ جو زندگی دی ہے نا، ایک ایوریج کے طور پہ، اس میں اب میں نے آپ نے کیا کر لیا ہے یہ تو اب ہم ہی جانے. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو عمر مبارک عطا کی تھی، اس میں اتنے بڑے بڑے کام ہو چکے کہ اب اس کے بعد بس اب یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے پیغامات ہیں. کام ہو جائے تو پھر دل بھی نہیں لگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے بہترین فائدہ لیا. چنانچہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا، تو رخصت کرتے ہوئے اور دوسری باتوں کے ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے. ظاہری بات ہے، جن کا اتنا ساتھ ہو، جن کے ساتھ رات دن کا اٹھنا بیٹھنا ہو، تو ان کی جدائی انسان کو اداس تو کرتی ہے، دکھی تو کرتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ کسی کو یاد رکھنے کا یا یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے مشن کو کنٹینیو رکھا جائے، تاکہ آگے بھی تو ملاقات ہونی ہے نا. وہاں شرمندگی ہو گئی تو کیا بنے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو کون سا آپ ملنا ہے، دیکھیں گے، زندگی رہی تو ملیں گے. کوئی بھی نہ ملے، آگے جا کے تو ملنا ہے نا. تو اللہ کے نبی کے ان الفاظ سے معاذ بن جبل سمجھ رہے ہیں کہ اب جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں. در حقیقت اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر کو اس دعوت کے ثمرات دکھا دے، جس کی راہ میں آپ نے 20 برس سے زیادہ عرصے تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھیں، اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد و نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں، پھر وہ آپ سے دین کے احکام اور شرائع یعنی شریعت کی باتیں حاصل کریں، اور آپ ان سے یہ شہادت لیں کہ آپ نے امانت ادا کر دی، پیغام عرب کی تبلیغ فرما دی اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا. اس مشیت ازدی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ کام ہونا تھا، اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا، تو مسلمانان عرب جوک در جوک پہنچنا شروع ہو گئے. ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ کی اقتدا کرے. پھر سنیچر کے دن، جب کہ ذی قعدہ میں 4 دن باقی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر روڑی، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا، اور ظہر کے بعد کوچ فرما دیا، اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے. وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے. صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے. حج تمتع کی طرف اشارہ. پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے احرام کے لیے غسل فرمایا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے جسم اتھر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی. خوشبو کی چمک آپ کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی، مگر آپ نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی. پھر اپنا تہبند پہنا، چادر روڑی، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی. اس کے بعد مصلی ہی پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی. پھر باہر تشریف لائے، قصوہ یعنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبیک بلند کی. اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لبیک پکارا. इसके बाद आपने अपना सफ़र जारी रखा। हफ्ते भर बाद जब आप सरे शाम मक्का के करीब पहुंच चुके तो ज़ी तुवा में ठहर गए, वहीं रात गुजारी और फजर की नमाज़ पढ़कर गुसल फरमाया। फिर मक्का में सुबह दम बिल्कुल सुबह से पहले दाखिल हुए। ये इतवार 4 ज़िलहज 10 हिजरी का दिन था। रास्ते में 8 रातें गुजरी थी। औसत यानी दरमियानी रफ्तार से इस मुसाफत का यही हिसाब भी है, यानी आपको पता चला कि मदीना से मक्का अगर आता है इंसान तो 8 रातें लग जाती हैं, तो ऊँटों पे सवार काफलों की सूरत में। मस्जिद हराम पहुंचकर आपने पहले खाना काबा का तवाफ़ किया, फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की, मगर अहराम नहीं खोला क्योंकि आपने हज और उमरे का अहराम एक साथ बांधा था। इसको क्या कहते हैं? हज किरान, साथ साथ, यानी इसके बीच में उमरे और हज के दरमियान में अहराम नहीं खुलता। और अपने साथ हदी यानी कुर्बानी के जानवर लाए थे। तवाफ़ और सई से फारिग होकर आपने बालाई मक्का में हजून के पास क़याम फरमाया, लेकिन दोबारा तवाफ़ हज के सिवा कोई और तवाफ़ नहीं किया। आपके जो सहाबा कराम आपके साथ हदी यानी कुर्बानी का जानवर नहीं लाए थे, आपने इन्हें हुक्म दिया कि अपना अहराम उम्रे में तब्दील कर दें और बैतुल्ला का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई करके पूरी तरह हलाल हो जाए, यानी अहराम की पाबंदियों से निकल आए। चूँकि आप खुद हलाल नहीं हो रहे थे, इसलिए सहाबा कराम को तरद्दुत हुआ। ये भी नोट कीजिएगा, जो काम अल्लाह के नबी नहीं करते थे, सहाबा उसको करने की जरूरत ही नहीं करते थे। उनको लगता था इसमें कुछ मसला होगा। आपने फरमाया, अगर मैं अपने मामले की वो बात पहले जान गया होता जो बाद में मालूम हुई, तो मैं हदी न लाता, और अगर मेरे साथ हदी ना होती तो मैं भी हलाल हो जाता। आपका ये इरशाद सुनकर सहाबाए कराम ने सरे एताते खम किया, और जिसके पास हदी ना थी वो हलाल हो गए। आप जानते हैं हज तमत्तो और हज किरान और हज अफराद, अल्लाह के नबी ने जो एक ही हज किया वो हज किरान था। उस वक्त तक आपको हज तमत्तो का हुक्म नहीं मिला था, लिहाजा आप तो अपना ऐसे ही किया हज, लेकिन लोगों को आपने कहा कि नहीं, उमरा करके अहराम खोल दो, फिर दोबारा हज के लिए अहराम बांधा जाएगा जब हज के दिन करीब आएंगे, और इसमें फिर कुर्बानी भी घर से नहीं लेके आनी होती, वहीं से करते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हर साल लाखों लोग इसी तरीके पे हज करते हैं। 8 ज़िलहज्जा जिसको तरविया कहते हैं, तरविया क्यों कहते हैं? पानी पिलाना। ऊँटों को खूब पानी पिला लेते थे कि अब आगे से सफ़र शुरू हो रहा है तो न जाने इनको कहीं पानी मिलेगा भी कि नहीं। तरविया के दिन आप मीना तशरीफ़ ले गए और वहाँ 9 ज़िलहज की सुबह तक क़याम फरमाया। जुहर असर मगरिब इशा और फजर 5 वक्त की नमाजें वहीं पढ़ी, फिर इतनी देर तवक्कुफ़ फरमाया यानी रुके वहाँ के सूरज तुलू हो गया। इसके बाद अरफा को चल पड़े। वहाँ पहुँचे तो वादिय निमरा में कुब्बा तैयार था, यानी आपके खड़े होने के लिए जगह। इसी में नज़ूल फरमाया। फिर जब सूरज ढल गया तो आपके हुक्म से कस्वा पर कजाबा कसा गया और आप बतने वादी में तशरीफ़ ले गए। इस वक्त आपके गिरदे 1,24,000 या 1,44,000, 44,000 और 24,000, 1 लाख के आगे इतने इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर था, यानी इतने लोग इकट्ठे जमा हों तो ऐसे ही लगता है कि पानी की लहरें हैं। आपने इनके दरमियान एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, अब आगे देखिएगा कि हजतुल विदा की मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें आपको शरीयत का खुलासा मिलेगा। पहली चीज़, लोगों मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं नहीं जानता शायद इस साल के बाद इस मुकाम पर मैं तुमसे कभी ना मिल सकूं। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की, रवां महीने की यानी ज़िलहज की, और मौजूदा शहर की हुरमत है यानी मक्का। सुन लो, जाहिलियत की हर चीज़ मेरे पांव तले रौंद दी गई, जाहिलियत के खून भी ख़त्म कर दिए गए, और हमारे खून में से पहला खून जिसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ वो रबिया बिन हारिस के बेटे का खून है। ये बच्चा बनू सात में दूध पी रहा था कि इन्हीं अय्याम में कबीला खुज़ैल ने इसे कत्ल कर दिया और जाहिलियत का सूद ख़त्म कर दिया गया, और हमारे सूद में से पहला सूद जिसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ वह अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है। अब ये सारे का सारा सूत ख़त्म है। हाँ, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह की अमानत के साथ लिया है और अल्लाह के कलमे के ज़रिए हलाल किया है। इन पर तुम्हारा हक ये है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जो तुम्हें गवारा नहीं। अगर वो ऐसा करें तो तुम इन्हें मार सकते हो, लेकिन सख्त मार ना मारना। और तुम पर इनका यह हक है कि तुम इन्हें मारूफ के साथ खिलाओ और पहनाओ, और मैं तुम में ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुमने इसे मजबूती से पकड़े रखा तो इसके बाद हरगिज़ हरगिज़ गुमराह न होगे, और वो है अल्लाह की किताब। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिही, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे जबकि तुम उसको थामे रखोगे। और वो क्या है? किताबुल्लाही व सुन्नती रसूलिही। अल्लाह करे कि आज भी ये चीज़ हमारे लिए आसान हो जाए। लोगों याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने परवरदिगार के घर का हज करना और अपने हुक्मरानों की इताअत करना। ऐसा करोगे तो अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल होगे। और तुमसे मेरे मुतल्लिक पूछा जाने वाला तो तुम लोग क्या कहोगे? साहबा ने काम शहादत देते हैं कि आपने तबलीग कर दी, पैगाम पहुंचा दिया और खैर ख्वाही का हक अदा फरमा दिया। ये सुनकर आपने शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया और लोगों की तरफ झुकाते हुए 3 बार फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। आपके इरशादात को रबिया बिन उमैया बिन खल्फ अपनी बुलंद आवाज से लोगों तक पहुंचा रहे थे। जब आप खुतबे से फारिग हो चुके तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने यह आयत नाजिल फरमाई, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहसियत दीन पसंद कर लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह आयत सुनी तो रोने लगे। दरियाफ्त किया गया कि आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, इसलिए कि कमाल के बाद जवाल ही तो है। यानी आज कुरान पूरा हुआ, अल्लाह की शरीयत पूरी हुई, अब आगे कहीं लोग इसको बिगाड़ ही ना दें। खुतबे के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अज़ान और फिर इकामत कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद हज़रत बिलाल ने फिर इकामत कही और आपने असर की नमाज़ पढ़ाई और इन दोनों नमाज़ों के दरमियान कोई और नमाज़ नहीं पढ़ी। इसके बाद सवार होकर आप जाए वकूफ़ पर तशरीफ़ ले गए, यानी जहाँ खड़े होने का हुक्म था। अपनी ऊँटनी कसवा का शिकम यानी पेट चट्टानों की तरफ किया और जबले मशात यानी पैदल चलने वालों की राह में वाक़े रतीले तोदे थे, यानी जैसे छोटे छोटे रेत के पहाड़ बने होते हैं ना, छोटी छोटी जगह के जहाँ से लोग पैदल गुजरते थे। यानी सहाबा ने, आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख भी उस वक़्त जो था उसको भी नोट किया। यानी जबले मशात पैदल चलने वालों की राह में वाक़े रतीले तौदे को सामने किया और किबला रुख मुसलसल इसी हालत में वकूफ़ फरमाया, यानी खड़े रहे, यहाँ तक कि सूरज गरूब होने लगा, थोड़ी सर्दी ख़त्म हुई, फिर सूरज की टिकिया गायब हो गई। इसके बाद आपने हज़रत उसामा को पीछे बिठाया और वहाँ से रवाना होकर मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ लाए। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ें 1 अज़ान और 2 इकामत से पढ़ी, दरमियान में कोई नफिल नहीं पढ़ी। इसके बाद आप लेट गए और तुलुए फजर तक लेटे रहे। अलबत्त सुबह नमूदार होते ही अज़ान और इकामत के साथ फजर की नमाज़ पढ़ी। इसके बाद कस्बा पर सवार होकर मशरे हराम तशरीफ़ लाए और किबला रुख होकर अल्लाह से दुआ की और इसकी तकबीर व तहलील और तौहीद के कलेमात कहे। यहाँ इतनी देर तक ठहरे रहे कि खूब उजाला हो गया। इसके बाद सूरज तुलू होने से पहले पहले मिना के लिए रवाना हो गए और अब की बार हज़रत फजल बिन अब्बास को अपने पीछे सवार किया। बतने महसर, बाद लोग इसको मखसर कहते हैं ना, तो सही प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, मुँह हसर। ये वो वादी है जहाँ बाबिलों के ज़रिए से पत्थर फेंकवाए गए थे। तो बतने महसर में पहुँचे तो सवारी को ज़रा तेज़ी से दौड़ाया। फिर जो दरमियानी रास्ता जमरा कुबरा पर निकलता था इससे चलकर जमरा कुबरा पर पहुँचे। इस ज़माने में वहाँ एक दरख्त भी था और जमरा कुबरा इस दरख्त की निस्बत से बहुत मारूफ था। इसके अलावा जमरा कुबरा को जमरा अकबा और जमरा उला भी कहते हैं। फिर आपने जमरा कुबरा को 7 कंकरियाँ मारी, हर कंकरी के साथ तकबीर कहते जाते थे। कंकरियाँ छोटी छोटी थीं जिन्हें चुटकी में लेकर चलाया जा सकता था। आपने ये कंकरियाँ बतने वादी में खड़े होकर मारी थी। इसके बाद आप कुर्बान गाह तशरीफ़ ले गए और अपने दस्ते मुबारक से 63 यानी 63 ऊँट ज़िबह किए। सुबहान अल्लाह, कितनी ताकत थी अल्लाह के नबी में। और उम्र मुबारक भी देखिए कितनी हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने आपको जिस्मानी ताकत दी भी है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंप दिया और उन्होंने बकिया 37 यानी 37 ऊँट ज़िबह किए। टोटल कितने हो गए? 100 ऊँट। इस तरह सौंठों की तादाद पूरी हो गई। आपने हजरत अली को भी अपनी हदी में शरीक फरमा लिया था। इसके बाद आपके हुक्म से हर ऊंट का एक एक टुकड़ा काट कर हांडी में डाला और पकाया गया। फिर आपने और हजरत अली ने इस गोश्त में से कुछ तनावुल फरमाया और इसका शोरबा पिया। खोया के ये दिखाया कि कुर्बानी के गोश्त में से खुद भी खाया जा सकता है, और हर एक में से लेने का भी यही मतलब था। इसके बाद नबी सल्लम सवार होकर मक्का तशरीफ ले गए, बैतुल्ला का तवाफ़ फरमाया। इसे तवाफ़ इफाज़ा कहते हैं। इफाज़ा किसको कहते हैं? अफाज़ा यफीज़ उफैज़न, हाँ इफाज़तुन, पढ़ चुके हैं कुरान में। फिर ना पलट कर आना, यानी अब वापस आए हैं ना हज करके, तो उधर से आने के बाद का तवाफ़। और मक्का ही में जोहर की नमाज अदा फरमाई। फिर चाहे जमजम, जमजम के कुएं पर बनो अब्दुल मुत्तलिब के पास तशरीफ ले गए। वो हुज्जाजे कराम को जमजम का पानी पिला रहे थे। आपने फरमाया, बनो अब्दुल मुत्तलिब, तुम लोग पानी खींचो। अगर ये अंदेशा ना होता कि पानी पिलाने के इस काम में लोग तुम्हें मغلوب कर देंगे, तो मैं भी तुम लोगों के साथ खींचता। यानी अगर सहाबे कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पानी खींचते हुए देखते, तो हर सहाबी खुद पानी खींचने की कोशिश करता, और इस तरह हुज्जाज को जमजम पिलाने का जो शर्फ बनो अब्दुल मुत्तलिब को हासिल था, इसका नज़्म इनके काबू में ना रह जाता। चुनाचे बनो अब्दुल मुत्तलिब ने आपको एक डोल पानी दिया और आपने इसमें से हस्बे ख्वाहिश पिया। यहाँ भी नोट किया आपने, काम करने से पहले सोचते थे आप। यानी अगर अल्लाह के नबी करते और हर सहाबी उस मोहब्बत में करने लगता, तो डिसिप्लिन टूट जाता। तो किसकी जिम्मेदारी है, किसकी नहीं है, किसने पहले करना बाद में करना, ये सब पहले से नोट होना चाहिए ताकि किसी किस्म की भगदड़ ना मचे। खैर, पूरा दिन हुआ। आज यौमुल नहर था, यानी 10 ज़िलहज। अल्लाह के नबी ने आज भी दिन चढ़े यानी चाश्त के वक्त एक खुतबा इरशाद फरमाया था। खुतबे के वक्त आप खच्चर पर सवार थे और हजरत अली आपके इरशादात सहाबा को सुना रहे थे। सहाबे कराम कुछ बैठे और कुछ खड़े थे। आपने आज के खुतबे में भी कल की कई बातें दोहराई। सही बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू बकरा रदी अल्लाह अन्हो का ये बयान मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहज को खुतबा दिया। आप अक्सर हज्जतुल विदा के नाम पर जो खुतबे की मुख्तलिफ कैफियात देखते हैं ना, तो आज आपको समझ आ जाएगा कि वो मुख्तलिफ जगह पे दिया था। एक तो वही था जो मेन 9 ज़िलहज को दिया था आपने अरफात के मैदान में, लेकिन फिर ये अब अगले दिन को भी दिया। तो कभी अगर अल्फाज का फर्क दिखे तो घबराना नहीं चाहिए। इस दिन आपने क्या फरमाया? जमाना घूम फिर कर अपनी उसी दिन की हैयत पर पहुंच गया है जिस दिन अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया था। साल 12 महीने का है, जिनमें से 4 महीने हराम के हैं, 3 पे दर पे यानी ज़ीक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम, और एक रजबे मुदर जो जमादिल आखिरा और शाबान के दरमियान है। मुराद कैसे जानते हैं ना, यानी जो नसी की रस्म उन्होंने अपनाई हुई थी, तो उसकी वजह से हज का मौसम बदल चुका था। हर साल जो हज होता था वो असल तारीखों पे नहीं होता था। जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया, इस साल वाकई महीना वापस उसी ज़िलहज की तारीख पे आ चुका था। गोया कि चांद के हेर फेर में लोगों ने जो कुछ की हुई थी चीज़ें, अल्लाह ने अपने नबी से एक ही हज करवाया और वो बिल्कुल सही पे किया। अब देखिए, कहते हैं ना, ख़राब घड़ी भी हो, अगर रुकी भी है सेल्स नहीं, तो 24 घंटों में एक बार वो भी सही टाइम दिखाती है। तो यहाँ ये मुराद है कि उस दिन बिल इत्तफाक ही या अल्लाह की मशीयत के मुताबिक चांद उसी डेट पे था जिस पे हज होता है। आपने ये भी फरमाया कि ये कौन सा महीना है। हमने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। क्या सहाबा को नहीं पता था कि ये ज़िलहज है? लेकिन ये अदब देखिए, और सीखने का शौक़ जब होता है तो इंसान अपने आप को बहुत आगे बढ़ाकर नहीं बल्कि पीछे रखकर पेश करता है कि शायद दोबारा सुनकर मुझे कोई और बात अच्छी मिल जाए। सहाबा बिल्कुल ऐसे ही थे। खैर, आप खामोश रहे यहाँ तक कि हमने समझा कि आप इसका कोई और नाम रखेंगे। लेकिन फिर आपने फरमाया, क्या ये ज़िलहज नहीं है? हमने कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया, ये कौन सा शहर है? हमने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। इस पर आप खामोश रहे यहाँ तक कि हमने समझा आप इसका कोई और नाम रखेंगे। मगर आपने फरमाया, क्या ये बलदा यानी मक्का नहीं है? हमने कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया, अच्छा तो ये दिन कौन सा है? हमने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। इस पर आप खामोश रहे यहाँ तक कि हमने समझा क्या आप इसका कोई और नाम रखेंगे। मगर आपने फरमाया, क्या ये यौमुन नहर कुर्बानी का दिन यानी 10 ज़िलहज नहीं है? हमने कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया अच्छा तो सुनो कि तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है जैसे तुम्हारे इस शहर और तुम्हारे इस महीने में आज के दिन की हुरमत है। देखिए, सिखाने का बड़ा प्यारा अंदाज है। उस्ताद अगर इस अंदाज से बात करें तो शागिर्दों के दिल पे लिखी जाती है वो बात। फिर आपने फरमाया तुम लोग बहुत जल्द अपने परवरदिगार से मिलोगे और वो तुमसे तुम्हारे आमाल के मुतल्लिक पूछेगा, लिहाजा देखो मेरे बात पलट कर गुमराह ना हो जाना कि आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बताओ क्या मैंने तबलीग कर दी? साहबा ने कहा हाँ। आपने फरमाया अल्लाह गवाह है, जो शख्स मौजूद है वो गैर मौजूद तक मेरी बातें पहुंचा दे, क्योंकि बास वो अफराद जिन तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी वो बास मौजूदा सुनने वालों से कहीं ज्यादा इन बातों के दरोबस्त को समझ सकेंगे, यानी इसकी बारीकियों को, इसकी हिकमतों को समझेंगे। इससे पता चलता है कि कभी कभी इंसान की जिंदगी में उससे लोग उतना फायदा नहीं उठाते, या उसके पास मौजूद लोग उससे इतना फायदा नहीं उठाते जितना फायदा दूसरे उठा जाते हैं। ये नसीब की बात है। आज उम्मत मुस्लिमा जो बराह रास्त नबी सल्लम की उम्मत है, आप देखिए कि आज वो कहाँ गए, और इसके बाद दूसरे लोग जो रिवॉर्ड्स की सूरत में कन्वर्ट होकर इस्लाम पे आए, वो आज कितनी खिदमत कर गए दीन की। क्या आज ऐसा नहीं है कि हम बोन मुस्लिम नबी के इस दीन से फारिग हो चुके? हमें तो बस छोटी सी अपनी ही बातें याद रह जाए तो बड़ी बात है। उन्होंने तो दीन को सामने रखकर कैसे पेश किया। आज हम शर्मिंदा नहीं होते जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करके कलमा पढ़ के फिर इल्म लेकर हमें सिखाता है। आप इंग्लिश स्पीकर्स के नाम लिखिए, आपको उस मोर देन 60 to 70% रिवर्ट्स दिखेंगे, क्योंकि वो जहालत में कुछ वक्त गुजार चुके होते हैं। हम मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुए, हमें पता ही नहीं हमारे नबी ने ये दीन हमें दिया कैसे। जितनी कुर्बानियों से अल्लाह के रसूल और सहाबा ने ये दीन हम तक पहुंचाया, और हम छोटी सी बात पे कहते हैं क्या हर्ज है, क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे जो होगा। यानी आज हमने अपने प्यारे नबी की मेहनतों पे पानी फेर दिया, छोटी छोटी बातों पे। दीन तो हमने अपनी मर्जी का किया ही किया, जीना क्या कर दिया। आज कोई हमें देखे और इस कुरान को पढ़े तो कहेगा वो कुरान दो जिस पे तुम मुसलमान अमल करते हो, और अगर तुमने बनना है तो अपने नबी जैसे बनो। ये चंद बातें अपने नबी की ले के बाकी दूसरों की लेकर क्या करोगे? आप देख रहे हैं कि मुख्तसर सा खुतबा है, लेकिन इसमें अपने हर मौजू को टच किया। अगली बात में आपने फिक्र आखिरत दिलाई, कहा कि और तुम लोग बहुत जल्द अपने परवरदिगार से मिलोगे, वो तुमसे तुम्हारे आमाल के मुतल्लिक पूछेगा, लिहाजा देखो मेरे बात पलट कर गुमराह ना हो जाना। देखिए, लीडर्स को फिक्र होती है। अल्लाह के नबी जैसा बड़ा मोहसिन कौन था इंसानियत का? आपको ये पता था कि शैतान रखने डालेगा, और अगर आपके जाने के बाद लोग वापस इस्लाम छोड़कर दूसरी तरफ चले गए तो आपको दुनिया में इसका गम लगा हुआ दिख रहा है। इस जुमले में ज़रा सा गौर कीजिए इस पे। एक रिवायत में कि आपने इस खुतबे में ये भी इरशाद फरमाया, याद रखो कोई भी जुर्म करने वाला अपने सिवा किसी और पर जुर्म नहीं करता, यानी इस जुर्म की पादाश में कोई और नहीं बल्कि खुद मुजरिम ही पकड़ा जाएगा। याद रखो कोई जुर्म करने वाला अपने बेटे पर या कोई बेटा अपने बाप पर जुर्म नहीं करता, यानी बाप के जुर्म में बेटे को या बेटे के जुर्म में बाप को नहीं पकड़ा जाएगा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, करे कोई और भरे कोई, वहां ऐसा नहीं होगा। याद रखो शैतान मायूस हो चुका है कि अब तुम्हारे इस शहर में कभी भी इसकी पूजा की जाए, लेकिन अपने जिन आमाल को तुम लोग हकीर समझते हो इनमें इसकी इताअत की जाएगी और वो इसी से राजी होगा। यानी शिर्क तो नहीं होगा मक्का में, लेकिन इसके इर्द गिर्द और बहुत सारे जाल फैला दिए जाएंगे। इसके बाद आप अय्यामे तशरीक यानी 11, 12, 13 जिलहज को मीना में मुकीम रहे। अय्यामे तशरीक कौन से हैं? जिसमें तकबीरात भी पढ़ी जाती है और कुर्बानी भी इनके अंदर की जा सकती है। इस दौरान आप हज के मनासिक भी अदा फरमा रहे थे और लोगों को शरीयत के अहकाम भी सिखा रहे थे, अल्लाह का जिक्र भी फरमा रहे थे, मिल्लत इब्राहिमी के तरीके यानी सुनने हदी भी कायम कर रहे थे, यानी पूरा हज करके दिखाया। वियलाइज हज था। साहबा ने जिन्होंने आपके साथ किया वो ऐसी है जैसे आज आप वीडियो में किसी को हज करता हुआ देखें, और ऐसा करना देखना ज्यादा मौसर होता है सिर्फ बातों के सुनने से, वो काम करने से। इसी तरह शिर्क के आसार और निशानात का सफाया भी फरमा रहे थे। आपने याम तशरीक में भी एक दिन खुतबा दिया, चुनाचे सुनन अबी दाऊद में हसन सनद है कि हजरत सरा बिनते बिनहान रदी अल्लाह अनहा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने हमें रुऊस के दिन खुतबा दिया और फरमाया, क्या याम तशरीक का दरमियानी दिन नहीं है? आपका आज का खुतबा भी कल यानी यौम नहर के खुतबे जैसा था, और ये खुतबा सूरत नसर के नजूल के बाद दिया गया था। ये कौन से दिन थे? 12 ज़िलहज का दिन है। औनुल माबूद किताब है, आप उसमें देख सकते हैं। मुराद क्या है कि बीच का दिन, बिल्कुल, यानी याम तशरीक जो 3 अलग दिन है ना, 11, 12, 13, तो ये 12 के दिन को रूस कहते हैं। रूस का मतलब है सर, ऊपर, यानी 3 में से बीच वाला हिस्सा सबसे ऊपर है, इससे ये मुराद है। याम तशरीक के खात्मे पर दूसरे यौम नफर यानी 13। अब देखिए, हर दिन के अंदर फिर नाम है, याम तशरीक, फिर उसके बाद हर दिन का अलग नाम है, ये मुराद है। तो आपको ये असाइनमेंट में सवाल दिया जा सकता है कि यौम नफर कौन सा दिन होता है, ठीक है। 13 ज़िलहज को नबी सल्लम ने मीना से कूच फरमाया और वादी अबतख के खैफ बनी कनाना में फ्रोकश हुए। दिन का बाकी मानदा हिस्सा रात वहीं गुजारी दी, और जहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाजें वहीं पढ़ी। अलबत्ता ईशा के बाद थोड़ा सा सोकर उठे, फिर सवार होकर बैतुल्ला तशरीफ ले गए और तवाफे विदा फरमाया। और अब तमाम मनासिक हज से फारिग होकर आपने सवारी का रुख मदीना मनव्वरा की राह पर डाल दिया। इसलिए नहीं कि वहां पहुंचकर राहत फरमाएं, बल्कि इसलिए कि अब फिर अल्लाह की खातिर, अल्लाह की राह में एक नई जिद्दोजहद का आगाज फरमाएं। ये होती है बामकसद लोगों की जिंदगी। एक काम पूरा तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं मक्का फतह हो गया, अल्लाह के नबी के लिए अच्छा सा घर बना दो और आरामदेह जगह दे दो और मजाक करें और पेंशन पे जिंदगी गई। एक मोमिन कभी पेंशन पे नहीं आता, उसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी वो दिन होगा, और होना चाहिए, यही दुआ मांगनी चाहिए कि जिस दिन वो अपने रब से मुलाकात करे तो उस दिन भी वो ऑन जॉब हो, ऑन ड्यूटी हो। अल्लाह ने ईमान की वजह से इतनी ऑप्शंस रखी हैं कामों की कि वो कहते हैं ना कि वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है। दुनिया में नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है, अभी तो काम बड़े हैं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम देखेंगे कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के बाद क्या किया। दिल में तो हर बात पढ़ने के बाद लग रहा है कि बस अब फारिग हो गए, अब फारिग हो गए, इसके बाद अब आपका कोई काम नहीं है। नहीं, आप देखिए कि इस्लाम में एक तो रिटायरमेंट का कोई तذکرہ नहीं है। अबू बकर सिद्दीक से लेकर चारों खुलफा को देख लीजिए, जिंदगी के आखिरी दिन तक अपनी जगह पे थे। हमारे जरा कोई बंदा काम करना सीखता है, उसको हटाकर दूसरे को ले आते हैं। आज के जमहूरी निज़ाम में यही तो है। क्या हुआ, तजुर्बात में कौम को डाल दिया। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें पढ़कर दिल पर यकीनन एक बोझ भी आता है, और खुशी ये होती है कि नबी सल्लम ने इतनी सी जिंदगी में इतना कुछ कर दिया। अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपसे मुझसे वो काम ले ले कि कल जब क़यामत के दिन नबी सल्लम से सामना हो तो शर्मसारी ना हो। अल्लामा इकबाल कहा करते थे कि अल्लाह तू बेनियाज है, तुझे क्या लगे मेरा हिसाब ना ले, क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर तूने मेरा हिसाब ज़रूरी लेना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा कर लेना, मुझे उनके सामने शर्मिंदा ना करना। ये एहसास नदामत है, आज उम्मत को ये नदामत आनी चाहिए। बड़े बड़े दावे करने, बड़े बड़े नारे लगाने, बड़े बड़े जश्न मनाने और सारी सारी रात बत्तियां जलाकर बातें करना आसान है, लेकिन कल नबी के सामने खड़े होकर ये बताना कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या था और मैंने कितनी सुन्नतों को माना और कितनी को पीछे डाल दिया। अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन की रुसवाइयों से बचाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।